कहते कैसे आप तुम, अरे मैं कहता हूँ तुम समझ रखो ये एक जाएगा। तो देखा जैसे शाम को जब खोलते खोलते कहीं नहीं मिला तो बस अभी सब हो गया। इसलिए भाई हरि कथा पर अधिक जोर दो, ये हमारे चित्त को पवित्र जैसा करके समस्त साधनों में भी मन लगा करके उसको शुद्ध करते। तो समणन कीर्तन अर्चन के लिए थी, अर्चन भी ऐसा ही है, अर्चन करो तर्कनाथ दास गोस्वामी जैसा। वैसे यदि नहीं आता तभी उनको भगवान मान करके और सब प्रकार से उनकी सेवा करते हुए अर्चन करो। अर्चन के द्वारा ही तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर वैष्णव के संग में रुचि हो जाएगी और धीरे धीरे हरि कथा में रुचि हो जाएगी और तब फिर ये सब चित्त को निर्मल करने के लिए और नियमित करने के लिए है। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो कनिष्ठ अधिकार में रहते वहीं पर रह जाएगा, वहीं पर आगे बढ़ने। तो अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य के लिए बतलाया। दास्य माने क्या, वंदना माने क्या, स्तुति आप भगवान के चरण, भगवान के चरणों में भक्तों के चरणों में गिरिराज गोवर्धन की, जमुना जी की, राधा कुंड की, श्याम कुंड की, वृंदावन की, नवदीप धाम की, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गिरिराज की, ललिता जी की, विशाखा जी की, ये सब ऐसे प्रार्थना करने को कहते हैं। और ये भी तीन प्रकार का वंदना होता है। पहला होगा क्या, और मैं बहुत ही शरणागत दीनहीन पहले होगा दंड बोधि का, यही शारण होगा अपना दंड सूचित करके। और भगवान बड़े कृपालु हैं, बस दोनों को बराबर होते हैं। जैसे नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमतः स्मरणेनतः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्गैव कीर्तिशं विहाय जगन्नाथ। अरे कहाँ अपार करुणा सिंधु आप हैं और कहाँ मैं ऐसा विषयी मूर्ख जो हमारे भजन में ऐसे उदार नाम में भी हमारी रुचि नहीं है, आपकी करुणा की तुलना नहीं हो सकती और हमारी इस विषय में दुर्गति की तुलना नहीं, दुर्बुद्धि की तुलना नहीं, ये भाव आता नहीं। इस तरह से भाव करते हुए इस भावस्मृति ये धन्य बोलेगा संप्रार्थनामयी, संप्रार्थनामयी ब्रह्मा जी ने कृष्ण की जैसी स्तुति श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध के 14वें अध्याय में सबकी तत भूरी भाग गमी हर जन्म की मटम जज गोकुले थी कतमान रजोभिषेकम जज जीवित निखिलम भगवान मुकुंदो जब जापद रजश्रुति निगमे। श्रुतियां जिसके लिए प्रार्थना करती हैं जिसकी कृपा के लिए और वो भगवान स्वयं गोपियों की मुट्ठी में उनके कान से उठते और बैठती हैं उन गोपियों की चरण धूलि लेने के लिए, मस्तक पर धारण करने के लिए। कहीं भी हमारा जन्म हो जाए घास लता गुलम जहां पर, अरे ब्रज में नहीं हो तो गोकुल में भी हो जाए कोई फर्क नहीं, गोकुल में जो जमा दादियां जो पैखाना जब कमाती हैं वो भी अपने गंदे पैरों को आकर के धोने के लिए जब पत्थर पर बैठेंगी और रगड़ करके पैर धोनी वो पत्थर ही मुझे रहा है उसको पैर रगड़ करके धो, ऐसी सब प्रार्थना। मुझे ये लज्जा आती है मैं इतना घोर अपराधी हूं, इतना अपराधी हूं कि जगत में ऐसा कोई अपराधी जगाई मधाई भी नहीं कर सकता, मुझको लज्जा आती है जो कहूं जे प्रभु आप क्षमा कर दीजिए, हमको बड़ी लज्जा आती है। दंड देना हो दंड दें, क्षमा देना हो मैं आपका हूं, मैं किस मुख से ये कहूं जी आप क्षमा कर दें। ये सब सम प्रार्थना है। और एक है लाल रसामयी, जब इनको पार करके जाए ललसामयी कृष्ण है कदा गंभीरया वाचा
श्रीयाजुक्त जगत
श्रीया जगतपते
चामरो व्यग्रहस्तम मामीव कुरीति वक्षसि।
मैं कब नारायण चंद्र जी कहें अरे हमारे लिए चमक तो हाथ में ये लगा दो, हम बैठे हुए हैं, हम लोगों को ये भी नहीं सुहाता, हमारी प्रार्थना क्या होगी, हम लोगों की लालसा हमारी नौतम था वो कबे गौड़ बने सुर दिल गते हा राधे हा कृष्ण बोली हा कृष्ण हा राधे बोली गंगा के किनारे सरस्वती किनारे मैं ऐसा गड़ा गा ब्रजवासी जने ब्रजवासी जने भेदना हरी वही कर गौड़वासियों भक्तों में और महाप्रभु यहाँ के वृंदावन के भक्तों में कोई भी भेद नहीं और वहाँ का धाम में नौदीप धाम में और वृंदावन में भी कोई भेद नहीं देखूंगा और कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं देखूंगा।
धामेर स्वरूप
ऐसे प्रार्थना करते हैं ललिता सखीर विनोद खरी मैं उनका पैर ऐसा जोर से पकड़ूंगा अब आपका चरण नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारी अभिलाषा नहीं हो। सिद्ध दिया दिया वृंदावन मांझे सेवा अमृता दान ये सब कहलाती है लाल शाम प्रार्थना। इन प्रार्थनाओं के द्वारा अंतराओं के द्वारा ये सब कहां से आएगा, ऐसे ऐसे वैष्णवों के संग में तब ये सब प्रार्थनाएं निकलती हैं और नहीं उसने ये किया उसने वो किया हम देख लेंगे ऐसा हो जाएगा करते 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 दो चार पैखाना हो जाएगा टट्टी हो जाएगी लंबी पतली उठ भी नहीं सके बस जगत को देख लेना हो जाता है मन मन और इसलिए दम्भाभिमान सब प्रकार का छोड़ करके भगवान का इति पुंसार्पिता ये नौ प्रकार की भक्ति करने से भी नहीं होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पहले अपने को गुरु के चरणों में अर्पित करो वो जब ग्रहण कर लेंगे और जब वो सुनाएंगे श्रवणम उनसे श्रवण करो तब फिर अपने आप कीर्तन और ये बाकी सब हो जाएगा। गुरु जी से श्रवण किए बिना ये सब चीजें नहीं होती इसलिए कोई अच्छी तरह से सुनता है तो वो झट पहुंच जाता है आगे आज वो नहीं सुनते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं भजन करते रहते हैं अपने आप वो संसार में घूमते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार से पहले गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण इति पुरुषार्थिता विष्णु माने यहाँ पर गुरु विष्णु गुरु जो विष्णु आश्रय जो विष्णु है उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो वो तुम्हें लेकर के कृष्ण के चरणों में तुम्हें दादी उपहार दे तो क्रियत भगवत अद्धा अद्धा में तो वही साक्षात रूप से निश्चित रूप से साक्षात रूप से वो भगवान के चरणों में वो भक्ति हो जाती है। जब इस क्रम से नहीं करेंगे तो वो भक्ति नहीं होगी ऐसा करेंगे भजन भी करेंगे और माया का भोग भी करेंगे हंसूंगा भी और गाल भी फुलाऊंगा दूध भी खाऊंगा और तमाक भी वो चिलम लूंगा दोनों दूध भी और वो दोनों एक साथ नहीं चलने का डूब करके चोरी विष्णु में आसक्ति है और इधर भजन भी हो जाएगा तो प्रभु भी वैसे ही देने वाले हैं वो एक हाथ से लेते हैं दूसरे हाथ से उतना वजन करके देते हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं। एक था कोई बहुत चलाक चतुर कोई व्यक्ति था बहुत चतुर तो एक कहीं से उसको लोहा का टुकड़ा मिल गया रद्दी तो वो गया लोहा के पास भाई ये हमारा इस्पात है इसको अच्छी तरह से बना करके देना। इस पात का लोहा है, इसे हमको बनाना है वो कोई काटने का कोई
दा
कोई चीज, तो वो बनाना है। आरी है, बछला है, रुखानी है, कोई भी चीज है, काटने का कोई चीज है। तो उसने कहा जी हाँ, हम देख रहे हैं आपका ये जैसा पात है वैसा ही बनेगा,
कोई चिंता नहीं,
कोई चिंता की बात, जैसा उत्तम कोटि का आपका ये है इस पात उसी तरह का आपका। ये नहीं कहा कि ये कैसा है, मैं तो मानेगा तो नहीं, इसलिए उसी का उसने बना करके दिया। जो ही काटा तो वो भार पड़ गया, कुछ कटा ही नहीं उससे। ऐसे ही वो प्रभु है, तुम जैसा भजन करेगा वैसा वो दे देंगे। तन्मन्य अभी जो ऐसे करेगा भजन, नौ प्रकार की गुरु जी के चरणों में आत्मसमर्पण करके, उनसे सुन करके और अनुकीर्तन करते हुए अर्थात उनके अधीन होकर निरंतर, तो बाकी में कीर्तन श्रवण स्मरण बंधन पाद सेवन सभी कुछ सुस्त रूप में। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जब तक पुरी में थे और महाप्रभु जी ने शालक वो
गिरिराज शिला
गिरिराज जी और
गुंजामाला
नहीं दिया था, तब तक अर्चन करते थे कि नहीं? अर्चन करने का प्रयास कुछ किया? कुछ नहीं, बस जाते थे, सुनते थे और ऐसा कहते थे वैसा करते थे। महाप्रभु जी ने अनुग्रह करके उनको अपने आप दे दिया। ऐसे ही कृपा करके वैष्णव लोग गुरु ऐसे साथ खुद जैसा विकास शिष्य को वैसे करता है। श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का प्रकार चित घन आनंद कृष्ण ने साक्षात कहा, सब शास्त्र तत्व बुद्धि क्रिया पर जी सब अनुवृत्ति माने, यहाँ तक सब शास्त्रों का तात्पर्य गुरु के मुख से सुन करके, वैष्णव के मुख से सुन करके क्रिया पर माने वैश्य का अनुसरण करने वाले हैं, कैसे निष्कपट होकर के करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि थे इमो विज्ञ, सर्वार्थ सिद्धि में वो विज्ञ है, उनका सब कुछ अपने आप स्वयं में हो जाता है। अंग हरे तो पाद अब दूसरे दिन करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर जिस पद्धति से हमें साधन भजन करने का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे साधन भजन करने से साथ में ही हम लोगों की सिद्धि बन जाए। पतितानं पावन नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकांत सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि। आदेविका तू हरगद गिराज्यवाचा जाचे निपत्त भूमि दंडवत उद्घटारती अश्चाशादमभिदस्य कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय
भोज्यं प्रब्धजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैतायनो विरहकाव पुत्रे पितं मैत्रात्मनः तं सर्वभूतहृदयम्
के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी श्रीमद् भागवत के प्रहलाद महाराज उपाख्यान का श्लोक श्रवण अंकृतम विष्णु स्मरण भाव सेवन पर्चनम बंदनम दर्शन सख्या इति पुंसार्थिका विष्णु भक्ति नवलक्षण भगवत्या तमन्य अधीशम साधारण रूप से हमने व्याख्या दी थी तो भगवान की कथाओं का नाम रूप गुण लीला का श्रवण यह श्रवण कानों से भगवान का नाम रूप लीला कथा परिकर का संबंध में कुछ भी जो स्पर्श होता है कानों से उसको श्रवण करते और वैसे ही जब मुख से जिह्वा से जब उच्चरित होता है तो उसको कीर्तन उसी को मन ही मन में स्मरण करने का नाम स्मरण है चिंतन करने का नाम स्मरण पाठ श्रवण इत्यादि के संबंध में हमने रखना है। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और जी गोस्वामी से टीकाओं से कुछ उद्धृत किया गया है। हम लोगों के लिए वही सब की जरूरत है इसलिए थोड़ा सा इनकी व्याख्या करता हूँ। सबसे पहले व्याख्या करने के पहले ये समझना चाहिए कि किसी महाभागवत में ये बतलाया कि कोई नौधा भक्ति करे चाहे चौसठ प्रकार की भक्ति करे अथवा सहस्त्र प्रकार की भक्ति है उसको भी करे सभी अंगों का पालन सभी के लिए संभव कर नहीं है किंतु कोई कोई एक भक्ति को ही लेकर के सिद्धि को प्राप्त होते हैं और कुछ कुछ लोग हैं जो बहु अंगों का एक साथ में मिला करके साधन करते हैं किंतु उसने ये देखना है कि जो एक अंग का पालन भी करते हैं उनमें भी बहु अंग किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं वो केवल एक का नहीं कर सकता वो रहेगा जैसे श्रवण कहा गया तो उसमें गुरुकरण से लेकर गुरु से भजन की शिक्षा और फिर भजन की शिक्षा के बाद में भजन करके अनर्थ निवृत्ति और गुरु जी की चरणों की विषम रूप से सेवा करना ये सब रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं हो करके यदि केवल केवल मात्र श्रवण करता है तो उसका श्रवण बेकार हो जाएगा इसलिए इन नौधा भक्ति में ही सब प्रकार की भक्ति सम्मिलित है ऐसा समझ लेना चाहिए। इसमें नहीं लिखा कि वैष्णवों को श्रद्धा करो तो फिर वैष्णवों को श्रद्धा नहीं करना है ना तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा इसलिए इस नौ में ये सब प्रकार की भक्ति का समावेश है, किंतु एक प्रधान होता है, कोई न कोई एक प्रधान। अब जैसे हम लोग ले बतलाया गया है परीक्षित अभवत श्रवणीय परीक्षित भव, परीक्षित महाराज जी श्रवण के उदाहरण आदर्श। अच्छा, ये जो श्रवण परीक्षित महाराज जी का हुआ, उन्होंने गुरुकर्ण किया होगा कि नहीं? गुरुकर्ण किया है, शांडिल्य ऋषि या कोई उनके उन्हीं के माध्यम से परीक्षित महाराज जी ने पीछे से ये कृष्ण के प्रपद्मनाथ को यहाँ का सब चीजों का सब जितने भी कृष्ण की लीला स्थलियां हैं उनको प्रकाश, तो वो उनके गुरु हैं। अच्छा, ये किससे सुन रहे हैं? वक्ता कौन है जो उनको सुना रहे हैं?
सुखदेव
गुरु, जिसे इनका क्या संबंध है? इसलिए दूसरे गुरु से सुनना नहीं चाहिए, ये बात ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? कोई भी दूसरा अपने गुरु के अतिरिक्त तो किसी की बात नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो सिद्धि नहीं होगी। ये बात ठीक है कि गलत है? इसलिए समझो, कुछ कुछ ऐसा समझते हैं कुछ लोग, बस अपने गुरु जो हैं जिन्होंने दीक्षा दी है, इसके अतिरिक्त दूसरों से हमें कोई भी मतलब सरोकार नहीं। अच्छा सुनेंगे बुरा सुनेंगे जो, इसलिए यह शास्त्रों में भेद नहीं माना गया अखंड गुरु तत्व होने के नाते। ऐसा भी हो सकता है जो हमारे गुरु जो हैं उनसे भी उन्नत अधिकार के लोग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बात है, हो भी सकते हैं। इनके गुरु से ये सुखदेव गोस्वामी उन्नत थे या नहीं थे, और उसको परीक्षित महाराज जी स्वीकार करेंगे कि नहीं, किंतु अपने गुरु का जो स्नेह है वो तो अलौकिक है, वो थोड़ा सा कम भी अधिकार का हो किंतु अपने गुरु का स्नेह उस पर होता है, ये बात ठीक है। किंतु यदि कोई महाभागवत जिनको कोई शिष्य करने इत्यादि से कोई मतलब ही नहीं है, महापुरुष हैं और अवधूत हैं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है ये कौन है नहीं है, ऐसे महाभागवत भी हो सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे ही थे, निर्भूत कसाय, निर्भूत कसाय, इनके अंदर में कोई भी कसाय नहीं, निवृत्त तरसई उपगी यमाना और सदा स्वप्न मनोभिराम, ऐसे ही महापुरुष। इसलिए ऐसे महापुरुषों का यदि संग कहीं मिल जाए तो उनको गुरु के समान स्नेह करना पड़ेगा कि नहीं, और प्रीति करना पड़ेगा, और यदि नहीं करता है तो इसलिए यहाँ पर श्रवण के लिए बतलाया गया परीक्षित महाराज। इन सबको साधारण आदमी नहीं समझेगा, इतना विचार ही नहीं जाएगा जैसे यहाँ पर किस लिए कैसे क्या उदाहरण दिया है श्री महाराज। इसलिए परीक्षित महाराज जी को श्रवण कहा। भक्ति में जब हम साधन कर रहे हैं, अभी साधक भक्त में हैं, तब तक हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ श्रवण है। नाम कीर्तन इत्यादि जितना है, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन बंदन दास साक्षात मुनिवेदन, उन सबसे श्रेष्ठ है अभिसाधन अवस्था में। जिसका श्रवण ही नहीं हुआ वो कीर्तन करने लग गया है तो क्या होगा? कुछ कीर्तन ही नहीं कर सकता है। पहले कीर्तन कहते हैं किसको, इस विषय को समझना चाहिए। कीर्तन किसको कहते हैं? अब इसको समझने के लिए इसमें कीर्तन शब्द के लिए जो बतलाया गया है, कीर्तन के आदर्श किसको लिया गया? वैयासिकी कीर्तन, वैयासिकी वैयासिकी माने सुखदेव गोस्वामी, ये कीर्तन के हमारे आदर्श हैं। अब इसके लिए विचार करो, सुखदेव गोस्वामी हारमोनियम बजाना जानते थे कि नहीं? और मृदंग, हारमोनियम मृदंग बजाना जानते थे और सुस्वर से गाना जानते थे कि नहीं?
बड़ा फलम छो
क्योंकि अभ्यास करें कि ना एक यहाँ पर जो हम कीर्तन कर रहे हैं उस कीर्तन को नहीं गा रहे हैं, वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन का एक भेद हो सकता है, वो कीर्तन वह है भगवान की लीला कथाएं अपने आप जिसके हृदय में उदित हो और वो फिर झरने की भांति अपने आप बहती रहती है विवश होकर के, उसे रहा नहीं जाएगा, तब इसको कहते हैं कीर्तन। ये सुखदेव गोस्वामी का कीर्तन सुनने के लिए कितने आदमी वहां पर उपस्थित हुए थे? ऋषि ही तो कितना?
88,000
विरक्त सन्यासी साधु महात्मा और गृहस्थ लोगों की आराधना उनका कीर्तन सुनने के लिए। कीर्तन किसको कहते हैं? भगवान के नाम रूप गुण लीला संबंधी जो कुछ हमारे मुख से उच्चारित होता है वही कथा है कीर्तन। इसको नहीं कहते केवल ताल स्वर से हारमोनियम बाजा और इत्यादि के माध्यम से हो। यदि कोई सुस्वर से, मान लिया कि कोई खूब सुंदर स्वर से राधा रमण हरी या दूसरा शब्द कर रहा है और खुद अनर्थ ग्रस्त है और एक आदमी कोई सुस्वर तो नहीं है किंतु हृदय में प्रेम है, अनर्थ ग्रस्त नहीं है, उसके अंदर में कोई भी अनर्थ अपराध इत्यादि नहीं है और वो बहुत ऊंचा उठा हुआ है जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, प्रभुपाद थे, हम लोगों के गुरु जी हैं, रूप सनातन जी थे, वहाँ के और षड़ गोस्वामी लोग थे, विष्णुदास चक्रवर्ती ठाकुर अथवा और जितने भी हैं, ये लोग कीर्तनकारी हैं। ऐसे लोगों के रूप से जो कुछ निकलता है वो कीर्तन, वो जगत के पवित्र बनाने वाला हो। और वो भी क्या होना चाहिए कीर्तन में, एक बात और चाहिए, खूब ध्यान से सुनो। यदि पूर्व पूर्व महाजनों के द्वारा वह विषय पहले कहा गया हो उसी का यदि उसी को कीर्तन कर रहा है तो वो कीर्तन। अनर्थग्रस्त व्यक्ति ताल ताल स्वर इत्यादि बांध करके जो छंदों के रूप में वर्णन करता है और अनर्थ दूर नहीं हुआ तो उसके द्वारा कीर्तित किया हुआ कुछ भी है उसका फल नहीं होगा। आजकल हम लोगों में भी ऐसी ऐसी चीजें प्रवेश कर गई और उसको सब लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, खबरदार ऐसा मत करो। अपने महाजनों के द्वारा अपने भाव के अनुरूप अपने रुचि के अनुकूल स्वजातीय वो यदि कीर्तन है तब तो वो ठीक है और नहीं तो जैसे तैसे जो तो बना लिया कविता बांध लिया और बस रसाभास और सब प्रकार का दोष उसका भगवान नहीं सुनेंगे। और महाजनों के द्वारा जो होगा ना अनुमोदित और जो किया हुआ कीर्तन उसको सुन करके भगवान जल्दी से प्रसन्न होकर इसलिए जैसे तैसे लोगों का कीर्तन करने से ये सब कीर्तन नहीं कहलाता किंतु समाज में यही चल रहा है, लोगों के मनोविनोद के लिए हम ऐसा ही कर देते हैं। हाँ सूरदास मीराबाई और सब जैसे हम लोगों के नरोत्तम ठाकुर जी हैं, नरोत्तम ठाकुर जी का हम लोगों के लिए सबसे अच्छा नरोत्तम ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर। कोई भी जगत का व्यक्ति ऐसा कह सकेगा ललिता सखी रुगा क्यों करी क्यों करी, ये कोई कह सकता है? राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, कोई भी जगत का कीर्तन से कीर्तन करने वाला जितना भी गला सुंदर ऐसा कोई कीर्तन बांध सकता है? और बांधने पर भी उनमें वो शब्द शक्ति जो है वो नहीं आएगी,
शब्द सामान्य हो जाएगा,
वो साधारण हो जाएगा, शब्द शक्ति उसमें कभी नहीं आ सकती। इसलिए जहां तक हो महापुरुषों के द्वारा कीर्तित किया हुआ गान ही नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज का उपाख्यान, ये यदि हम भागवत से लेकर के करते हैं और वक्ता भी उसी उच्च कोटि का हो तो उससे फल हो, उसके बातों को लोग सब समझेंगे और हृदय के अंत तक पहुंच करके उसको उद्भुत न करके उसकी सिद्धि करा दे। अन्यथा ढोलक मजीरा महाराज जी हम एक कीर्तन करें, देख रहे हैं सुजोग नहीं मिल रहा, अब झट बीच ही में से वो सब कीर्तनों से हम लोगों का जो भाव है वो परिपक्व नहीं होगा, उससे कोई अधिक कल्याण। इसलिए पर कीर्तन करने वाले में उस समय भी कितने गायक होंगे किंतु उसको न कर करके ये सुखदेव गोस्वामी को बैयास की कीर्तने क्यों किया, ऐसा कीर्तन करने की तुम लोग चेष्टा करो, इसको करते हैं कीर्तन केवल छंदोबद्ध ही कीर्तन नहीं, यथार्थ कीर्तन ये है। ऐसे ही अपने आदर्श से रहो, आचरण वैसे हो, चरित्र ऐसा हो और भगवान का भजन भी ऐसा हो, और तब वो भगवान का चैत्य जो वर्णन करेगा जगत के लिए परम मंगलकारी होगा भाई, तुम लोगों के लिए भी मंगलकारी होगा। अन्यथा दूसरों को वाह कैसा हमने किया, जरा देखिए तो, जरा सुना सुनिए तो, उसके संते कुछ मिला। हम लोग कभी कभी ऐसे लोगों का सुनते हैं इसलिए कि उनको रुचि होकर के फिर महाजनों के रास्ते पर आएंगे, इसलिए सुजोग देते हैं, उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए नहीं। प्रभुपाद जी ने मायापुर में जब उन्होंने आरंभ किया तो वो रामचरण रामचरण दास बाबा जी, चरण दास बाबा जी और सब लोग उन्होंने कीर्तन सुना, किंतु उनके कीर्तन से कोई सुविधा नहीं होगी, प्रभुपाद ने फिर छोड़ दिया। इसलिए बैयास की कीर्तन है, व्यास सुखदेव गोस्वामी का ही कीर्तन कीर्तन, इसलिए कभी भूल में मत रहना, जो सुंदर गला नहीं है, मृदंग के साथ में नहीं हो रहा है और हारमोनियम के साथ में नहीं, हारमोनियम तो प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु जी ने, महाप्रभु जी ने किसी ने इसका प्रयोग नहीं किया, इधर के लोग बिना हारमोनियम के गा ही नहीं सकते, उनका ये गला ही नहीं सुख, तो इसलिए केवल यही कीर्तन नहीं है। कीर्तन का जथा तात्पर्य भगवान का नाम रूप गुण लीला शुद्ध चरित्र होकर के अपने आचरण के द्वारा और अनर्थों से निवृत्त रह करके अपने भी करे, दूसरों के लिए भी वो करे, अपना भजन हुआ है ऐसा समझ करके करता है तो वो कीर्तन। स्मरण वही जब मन के द्वारा उसका इन सब चीजों का स्पर्श होता है, स्मरण के लिए किनको कहा गया, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद जी हरिनाम कीर्तन करते थे कि नहीं, गुरु का आदर करते थे कि नहीं, उनके भी गुरु नारद जी थे, इसलिए गुरु जी की शिक्षा इत्यादि और उनका सम्मान इत्यादि भी ये समस्त अंग भी पालन करते, और निषेधात्मक जो दश हैं वो उसको वर्जन करते। तो ये 20 तो पालन हो गया, तुलसी में जल देते होंगे कि नहीं, मंदिर में आरती देखते होंगे कि नहीं, ये सब करते होंगे, इसलिए एक का मतलब यह नहीं है कि और सबकी उपेक्षा कर देता है, एक प्रधान है और उसके अंतर्गत जब समय मिलता है तो सब काम को करते हैं, इसका ये तात्पर्य, एक प्रधान होना चाहिए। तो वो स्मरण में प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जी क्या स्मरण करते हैं, जो स्मरण करते हैं उसी को बच्चों की सभा में बतलाए, स्मरण करते हैं भगवान का नाम रूप गुण लीला। स्मरण क्या करते हैं, जितने भी जीव हैं हमारे इष्ट देव के वो भजन करते हैं, और इष्ट देव में भी अपने जितने भी जगत के लोग जीव हैं उनको सभी को दर्शन करते हैं, ये महाभागवत और भगवान की लीला कथाओं का सब अपने अधिकार के अनुरूप में चिंतन करते हैं। उस समय भागवत का प्राकट्य नहीं था, भागवत था, भागवत थे किंतु अप्रकट थे। इसलिए यदि भागवत होता और यदि नारद जी उनको उनका उपदेश दिया होता तो कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते करते हो सकता था कि रासलीला का भी चिंतन करते। ये सब चिंतन है। जितने भी कीर्तन, जितने भी श्रवण, जितने भी श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि हैं, ये सब मूल श्रीमद् भागवत, भागवत के कथाओं का सुनना ये समय है। भगवान की कथाओं का कीर्तन ये सबसे बड़ा कीर्तन है। भगवान की कथाओं का, लीला कथाओं का चिंतन ये सबसे, इसी प्रकार से सब चीजों को जानना। जो इसके अतिरिक्त दूसरे चीजों का चिंतन करता है उनका श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब कुछ गड़बड़ी है। हमारे गोस्वामी ने जो कुछ किया है भागवत के आधार पर ही सफल और किसी को दिया। हम आगे अभी जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचारों को हम सुन पाएंगे। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी पहले कहते हैं, विप्राधमयो अनेव गुरुत्तम नास्ति। उनके जो गुरु थे संडामर राज महाराज, वो गुरु नहीं थे, उनमें गुरुत्व नहीं था, क्योंकि भगवान से उनका कोई भी संबंध नहीं था। इसने पूछा हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद अनुच्यतां तापस्वधीतं किंचित उत्तमं काले ने एतावत जुष्मान जब अशिक्षित गुरु था। तुमने अपने गुरु से जो कुछ सीखा है, शिक्षा की है, उसमें तुमको जो सबसे अच्छा लगा हो उसको तुम बताओ। उसी के लिए ये कह रहे हैं विश्वनाथ। इन्होंने कभी भी संडामर को अपना गुरु नहीं माना, क्योंकि गुरु थे ही नहीं। अथच उनको लौकिक रीति से गुरु मानना पड़ा। गुरु लौकिक रीति से उनकी अवज्ञा भी कभी नहीं करते थे। मैं तुम्हें गुरु नहीं मानता, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, ये कहते थे कभी? ये भी नहीं कहते। उनको यथाजो सम्मान देते हुए अपना परमार्थिक गुरु, नित्य गुरु मानते थे नारद जी को। उन्होंने विचार किया जो हम मैं अपने ये कह रहा है कह रहे हैं पिताजी, जो अपने गुरु से तुमने जो कुछ सुना है उसको बदला, तो हमारे यथार्थ गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी से मैंने जो कुछ सुना है और मुझको जो उसमें से उत्तम जो मुझे प्रतीत हुआ है, मैं उसी को इनको बताऊँ। अपने गुरु संडामर की जो साम दाम दंड भेद इत्यादि की जो नीतियाँ हैं उसके संबंध में हमको कुछ भी नगर, ये कोई शिक्षा ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहना आरम्भ किया। गुरु नारदार नारद के समीप उन्होंने जो कुछ शिक्षा पाई है, बस केवल उन्हीं में से ही हमको जो अच्छा लगा है, हमको लगी अच्छी क्या बात? भक्ति की बात लगी अच्छी। ये भक्ति नौ प्रकार की होती है, इसलिए साधारण रूप में उनको बखलाने कहने लगे। ऐसा सूत करके कहते हैं, श्रवणम पाद सेवनम परिचर्या। पाद सेवन माने परिचर्या। परिचर्या माने क्या? विशेष रूप से जो सेवा होती है उसको परिचर्या कहते हैं। अर्चनम माने यहां पर पूजा। दास्य माने दासत्व भाव। तो यहां पर श्रवणम कीर्तनम स्मरण, उसके बाद में पाद सेवन। पाद सेवन किसका है?
तदंगी भजने लक्ष्मी,
लक्ष्मी जी का पाद सेवन। लक्ष्मी जी जैसा पाद सेवन भगवान के चरणों की सेवा परिचर्या करती हैं उसको समझो, उसी तरह से और भी जो दूसरे हैं सेवाएं हैं बड़े प्रेम के साथ में जो सेवा करती हैं वही पाद सेवन। ये तो लक्ष्मी तक का वहां पर वर्णन है, किंतु इससे भी कोई सेवा हो सकती है? पद सेवा कौन सी सेवा हो सकती है? अपनी परम काष्ठा पर गोपियों की जो सेवा है वो सबसे
चरम पद।
गोपियों की जो चरण सेवा है कृष्ण, और उससे भी कुछ अधिक है, वो क्या है? स्वयं कृष्ण ही, जबकि सेवा कुंज में कृष्ण के, राधा जी के चरणों की सेवा जब करने लगते हैं, ये पाद सुनने हैं उनके लिए, हम लोगों के लिए केवल अभी समझ करते हैं, इसलिए पद सेवन करने से वो। ऐसे ही यहाँ पर सेवा के लिए भगवत संबंधी सबको आया, और उपलक्षण में गुरु वैष्णव सबको ले, यहाँ पर सभी कुछ जो कुछ भी कहा गया है भगवत श्रवणम कृष्ण संबंधी, स्मरणम कृष्ण संबंधी, कीर्तनम कृष्ण संबंधी, पाद सेवनम कृष्ण संबंधी, जो कुछ है वहां पर सब कुछ, किंतु उपलक्षण में भक्त और भगवान दोनों को दिया जाए, भगवान को ही है और उनके, नहीं तो आधा हो जाएगा। जहां जहां पर कृष्ण शब्द का अकेला प्रयोग हुआ है उसे समझ लो राधा कृष्ण, सख्यम, सख्य किसका बतलाया गया? अच्छा, अर्चनम पृथ्वी पूजनम, पृथ्वी जी का पूजन कैसा है? उन्होंने पूजा की थी, रोज पूजा घंटा बजा करके करते थे ना, घंटा बजा करके हम लोग जैसा पूजा, ऐसा पूजा नहीं, अभी पूजन ही नहीं आरंभ हुआ, उन्होंने मन ही मन पूजा करके ना, और पूजा करने के बाद में विधिवत ये सब पूजा की, और ठाकुर जी स्वयं उनके सामने साक्षात हो गए, एकदम साक्षात होकर के उनकी दी हुई चीजों को, उपहारों को, और उनको साथ ही साथ में जो वर है वो सुबह, ये पूजन का भगवान एकदम प्रसन्न हो जाए। अभी हम लोगों का अर्चन, अभी अर्चन नहीं, अभी हम लोगों का क्या चीज है अर्चन? अभी भगवान के समान जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक उनका अर्चन नहीं होगा, पहले विष्णु बनना पड़ेगा, बिना विष्णु हुए न देवम अदेवम अर्चय, और देवम जो व्यक्ति है और वही वो व्यक्ति है, जो देवता नहीं हुआ है वो देवता की पूजा नहीं कर सकता, इसलिए भगवान के समान भाव होना चाहिए।
विष्णु बनने का तात्पर्य क्या है?
विष्णु तात्पर्य उनका सेवक, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीयानाम वो तदीय, इसलिए पृथ्वी महाराज जी का अर्चन यहाँ पर दिया गया। ऐसा ही अर्चन हो जो भगवान एकदम उपस्थित हो जाए, रोटी दिया उनके लिए, रोटी मल में घी लगाने के पहले ही प्रभु आकर के मांगने लग गए, ऐसा उनको गरम गरम, और उनसे सहा नहीं जाता, जल्दी से भाई ले आओ, बड़ी जोर से भूख लगी। वो विदुर के घर में जब पहुंचे, विदुरानी के घर में, तो बोले जब मुझको कुछ खिलाओ तो वजह से आप ठहरिए, थोड़ा सा बैठिए, मैं अभी ले आ रहा हूँ बना करके। अरे बनाने के लिए तुम्हारे घर में जो कुछ है उसी को, भगवान को भी ठहरा नहीं जाता और उसको भी ठहरा नहीं गया, अंत में एकदम तन्मय होकर के केले के छिलके और उसी को बड़े प्रेम से खाने लगे। विदुर जी आकर के देखा, बिगड़ करके कुछ बोलने वाले थे, इशारा से बंद किया, मैं रोटी और केला का छिलका ये नहीं खाता हूं, मैं तो प्रेम का पारस ग्रहण करता हूं, तो इसलिए प्रेम का पारस मुझे दे रही है, मैं वो इसी को खा रहा हूं, केले के खाने से हमारा स्वाद बिगड़ जाएगा, अभी बहुत स्वाद अच्छा है, इसलिए ऐसा यदि प्रेम के सहित में हो। उन्होंने कहा नानो पचार पूजनम आर्थ बंधो, यदि आर्थ होकर के, आर्थ बंधो भगवान है ना, आरती के साथ में प्रेम के साथ में यदि उनका कोई पूजन करता है तो उसको ग्रहण करें, अन्यथा वो ग्रहण नहीं, इसलिए पृथ्वी महाराज जी के स्मरण पूजा। पूजनम पृथ्वी पूजनम अक्रूरस्त अभिवंदनम, वंदना कैसे होनी चाहिए? अक्रूर जैसी, नंदगांव गए कृष्ण को लाने के लिए, कृष्ण और बलदेव रास्ते में नंदगांव की सीमा में पहुंचकर देखा कि कृष्ण के चरण कमल, उसमें ध्वज
ध्वजा वज्र अंकुश कमल त्रिकोण कलश ये सब बस एकदम लूट गए वहाँ से कूद करके और अपने कभी अंक में लोट रहे लेकर के कभी यहाँ धारण कर देते हैं कभी इधर और आंखों आंसुओं से सिक्त करने लगे बड़े प्रेम से कृष्ण में चाचा जी कहेंगे और बलदेव जी जाएंगे पहचानेंगे कि नहीं और एकदम प्रेम से और वंदना श्रीमद् भागवत में वो वंदना जी इस तरह से वंदना के लिए अपूर्व जैसा वंदना हम वंदना करते हैं देखते हैं कि हमारा सूर ठीक चल रहा है कि नहीं चिंतामणि प्रकर सुकल्प वृक्ष लक्षा कृते सुसुरभि रभिपालयम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंद मामिपुरुषम् तमहम् सुंदर स्वर है किंतु तुम्हारा हृदय कहाँ है हम लोग हृदय की तरफ नहीं आंखों से आंसू आ रहे हैं और आंसू हृदय पिघल करके हो रहा है न कि कैसे इन सबके साथ में ऐसी स्तुति को भगवान जैसे अभी बनता कपिपति दास से दास यहाँ जो कहा गया है उसका अंतिम चुड़ा है कहाँ कपिपति एक मिनट भी अपने प्रभु को छोड़ नहीं सकते एक मिनट भी नहीं यदि प्रभु ने कहीं भेजा भी तो उन्हीं का स्मरण चिंतन इत्यादि करते हुए जो कुछ भी होता है सब प्रभु के प्रीति के लिए ही करते हैं उनका उद्देश्य उनको सोने सुना अपना कुछ नहीं है यदि उनकी सेवा कोई